समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णु है और गुरु ही महेश हैं, वे साक्षात हैं, उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। कहते हैं गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, गुरु के बिना जीवन अंधकार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी गुरुओं को सादर नमन, उनका दिया हुआ ज्ञान हम सभी को जीवन की राह दिखाता रहे।
Yes, Jaya. Guru Purnima, also known as Vyas Purnima, commemorates the birth of Maharishi Ved Vyas, revered as the compiler of the Vedas and author of Mahabharata, whose spiritual legacy as the Adi Guru continues to shape these traditions. For Buddhists, the day marks Lord Buddha's first sermon at Sarnath, initiating the formation of Sangha and spreading the Dharma. In Jainism, it celebrates Lord Mahavira's appointment of Gautam Swami as his first disciple.
इसी के साथ आगाज करते हैं आज की नई सुबह का। मैं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती एक बार फिर हाजिर हूँ आकाशवाणी FM गोल्ड पर और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना मैथ्यू। सुनने वाले आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार।
हेलो जया एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 10th of July 2025.
तो नीना सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण थी, जो भारत और नामीबिया के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुए। लगभग 30 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की यह पहली यात्रा थी। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाएं, UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारी इस यात्रा की प्रमुख सफलता रही। नामीबिया के विकास में साझेदारी के साथ साथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी इस यात्रा का योगदान रहा। विंडॉक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय द्वारा भी प्रधानमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने विदेश में रहते हुए अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रवासी भारतीयों की सराहना भी की थी। प्रधानमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान नामीबिया के राष्ट्रपिता सैम नुजुमा को नेशनल हीरोज एकर पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए विंडहॉक से मैं अपर्णा खुंड।
विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि भारत और नामीबिया के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।
सवाल उठा है कि एनवायरनमेंट के बारे में दोनों देश की क्या पार्टनरशिप होगी। आप जानते हैं 22 में इंडिया और नामीबिया की पार्टनरशिप की वजह से हम चीता रिलोकेट किया। अभी उसका सेकंड फेज का बात चल रहा है, लेकिन ये तो सक्सेसफुल पार्टनरशिप है दोनों को देश के बीच में और उसको बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपर्ट्स के बीच में अभी चर्चा चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि कहां तक हम इसको सेकेंड फेज में ले आ सकते हैं।
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has underscored the need for non-banking financial companies, NBFCs, to integrate governance, risk management and customer protection as part of their core beliefs and ethics. Addressing the NBFC Symposium 2025 in New Delhi, the Finance Minister said, as the NBFC model matures, the focus on risk management should increase. Ms. Sitharaman highlighted that the fundamentals of the NBFC sector are underpinned by strong capital buffers, robust interest margins and earnings, and low levels of impairment.
NBFC's fundamentals has been underpinned by strong capital buffers, robust interest margins, and earnings and low levels of impairment. Asset quality has shown steady recovery, particularly since the pandemic, with NBFC sector's gross NPAs having steadily declined from 6.4% in March 2021 to reach the current level of 3% in March 2025.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और त्वरित समाधान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को लागू करने पर भी चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 से अधिक एजेंडे तैयार किए गए। बैठक में झारखंड की ओर से विभिन्न योजनाओं के मद में केंद्र के पास कथित बकाए का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी रखी जा सकती है। 14 जिलों में बंद किए गए SRE फंड को पुनः शुरू करने की मांग भी इस बैठक में रखी जा सकती है। बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्ति और देनदारी के बंटवारे तथा पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
In a major recruitment push, Indian Railways has issued over 9,000 appointments in the first quarter of the financial year 2025-26. Railways said it will offer more than 50,000 jobs by the end of the current fiscal. More from our correspondent.
Since November 2024, the Railway Recruitment Board's RRBs have conducted computer-based tests, CBTs, for over 1.86 crore candidates across seven different notifications, covering a total of 55,197 vacancies. The large-scale examinations are part of a broader recruitment calendar that has so far announced 1.08 lakh vacancies since 2024. Railways also plans to extend its recruitment efforts into the next financial year with another 50,000 appointments expected to be made in financial year 2026-27. Conducting computer-based tests at such scale is a complex logistical operation. In a move to ease the process for candidates, the Railways has taken the initiative to assign exam centers closer to candidates' places of residence. Special preference has been given to female candidates and persons with benchmark disabilities. To uphold transparency and fairness, the Railways has introduced Aadhaar-based eKYC authentication for candidate verification, a first for such large-scale government exams. Railway Ministry reported a success rate of over 95% in the implementation of this digital identity verification system. Additionally, 100% deployment of electronic jammers has been ensured at all exam centers to prevent cheating through electronic devices. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है। उधर पुरुषों के क्रिकेट में आज लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला से तीसरे टेस्ट मैच में भारत और मेजबान इंग्लैंड आमने सामने होंगे। बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट में भारत की 336 रनों की शानदार जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबर है।
In Wimbledon tennis, Novak Djokovic won a testing battle against Flavio Cobolli to reach a record 14th Wimbledon semi-final of the men's singles. The Serb defeated Italian Flavio Cobolli 3-1 at the All England Club yesterday. Djokovic will next face world number 1 Jannik Sinner of Italy in the semi-final clash. In women's singles, world number 1 Iga Swiatek reached her first Wimbledon semi-final by defeating 19th seed Lyudmila Samsonova 6-2, 7-5.
और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। नीना शर्वात, चेन्नई से।
यस जया, द मद्रास हाई कोर्ट हैज इम्पोज्ड 1 लाख cost on Greater Chennai Corporation Commissioner J. Kumar Guru Baran over his inaction over unauthorized construction in Royapuram zone. The first bench of Chief Justice K. Sriram and Justice Sundar Mohan directed the state government to deduct the amount from the commissioner's salary and deposit it into the account of Adyar Cancer Institute. The court passed the order on a contempt petition on the failure to comply with a court order dated April 8, 2022 to remove unauthorized construction in Zone 5. Moving over to Bengaluru, as part of the efforts to build a more people-friendly image, the Bengaluru West Division Police have introduced child-friendly rooms at three of their stations under a pilot project. These dedicated spaces aim to offer a calm and welcoming environment for children who visit police stations with their parents. Police Commissioner Simant Kumar Singh said the initiative not only ensures a safe and child-sensitive atmosphere, but also seeks to spread awareness about crimes against children. It further serves to educate. News from Hyderabad now. As many as 19 people fell ill, three critically after consuming toddy yesterday. They were admitted to various government hospitals in Hyderabad. Of them, 15 are undergoing treatment at NIMS Hospital, two at Gandhi Hospital, and two more at private hospital in Hyderabad. The victims consumed adulterated toddy at three different toddy shops in Kukatapalli area. State Excise Minister Jupali Krishna Rao said that the government responded promptly to the incident and took necessary steps, including seizure of the implicated toddy compounds.
अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने शहर में 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले स्मार्ट क्लासरूम को भी मंजूरी दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मीडिया को व्यापक डिजिटल क्लासरूम विस्तार योजना के बारे में बताया। वहीं दिल्ली मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर्व के उपलक्ष्य में राजधानी के लाल किला और चांदनी चौक में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की भी मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष प्रकाश और ध्वनि शो, कीर्तन दरबार, संगोष्ठी, चित्रकला, ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी और श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का सार्वजनिक पाठ शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय इतिहास में सिख शहादत नाम से नया कोर्स शुरू किया है। इसे सिख समुदाय के न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा में दिए गए योगदान की औपचारिक मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंधूर रेलवे ओवरब्रिज का आज उद्घाटन करेंगे। यह मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और मुंबई में पी डिमेलो रोड को जोड़ता है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस उद्घाटन से दक्षिण मुंबई में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा लिंक होगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना और यातायात की भीड़ को कम करना है। वहीं अगर हम बात करें देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता के अलीपुर में एक उद्योग केंद्र का उद्घाटन करेंगी। शिल्पन्ना नामक यह केंद्र चमड़ा और कपड़ा उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देगा। उद्योग समन्वय समिति के सदस्य और मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार अमित मित्रा ने बताया कि भारत द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले चमड़े के उत्पादों में पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर जया और नीना के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। दिल्ली में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा के भी आसार हैं। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
Yes. Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के उस पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 10 जुलाई 2025 है। 10 जुलाई का दिन कहने को तो एक सामान्य सा दिन है, लेकिन इतिहास के झरोके में झांके तो इस तारीख के नाम बहुत सी अच्छी और बुरी घटनाएं दर्ज है। हालांकि इतिहास के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि आज का दिन और किस लिए खास है। तो बता दें कि हर साल 10 जुलाई को दुनिया भर में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें ऊर्जा के उन स्रोतों के बारे में सोचने का मौका देता है जो न केवल हमारे आज को रोशन करते हैं बल्कि हमारे कल को भी सुरक्षित रखते हैं। आज के समय में जब जीवा ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस तेजी से खो रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह दिन हमें नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्यों नीना
जी? इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी वॉज फाउंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बैक इन 2023। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, पर्टिकुलरली SDG 7, विच टारगेट्स यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी बाय 2030। द चोजन डेट इज दैट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इन 2009, सिंबलाइजिंग अ यूनिफाइड कमिटमेंट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। Now, Jaya, let's begin with the historical events of this day, that is 10th July.
Bilkul.
In 1909, Gandhiji arrives in London with the assistance of Lord Amtil and works ceaselessly to educate influential British leaders and the public, and also to move imperial authorities. In 1965, first NCC, National Cadet Corps, College for Training Girls started at Gwalior, and in 1992 SROSSC placed in orbit Indian National Satellite INSAT-2A, first indigenously built satellite of second generation INSAT series launched from Koror. This is more operational multi-purpose communication and enhanced meteorology satellite. It is still in service.
और आज ही के दिन 1995 में म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक असंतुष्ट और नजरबंद नेत्री आंग सान स्यू की लगभग 6 वर्षों बाद नजरबंदी से मुक्त की गई। और 1997 में फिजी में नए संविधान की मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय को राजनीतिक अधिकार मिला था।
In 1997, Malleshwari earns India's first gold medal in Asian Weightlifting Championship in Beijing. 2000, Pete Sampras wins his 7th singles Wimbledon title and his 13th Grand Slam title, overtaking Roy Emerson's 12 titles.
और 2008 में आज ही के दिन भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात कर ले उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा।
Before that, Jaya, there is an advisory news which I'd like to read for our listeners.
Bilkul.
Delhi International Airport has issued a passenger advisory owing to heavy downpour in Delhi NCR region. It has asked them to consider alternative modes of transport, including Delhi Metro, to reach the airport and avoid potential delays. Delhi Airport said, for the latest flight information, passengers are advised to contact their respective airlines. It said all flight operations at Delhi Airport are currently normal.
जी, अब हम याद करते हैं आज के प्रमुख व्यक्तित्वों को। हम याद कर रहे हैं भिखारी ठाकुर को। जो भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, नारी विमर्श और दलित विमर्श के उद्घोषक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। राहुल सांकृत्यान ने उनको अनगढ़ हीरा कहा तो जगदीश चंद्र माथुर ने भारत मुनि की परंपरा का कलाकार कहा। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा गया।
Today we remember Arthur Wantner, a British actor best known for playing Sir Arthur Conan Doyle's master detective Sherlock Holmes in five films from 1931 to 1937. Wantner's acting career began on the stage where he played such roles as Tybalt in Romeo and Juliet, Bassanio in The Merchant of Venice, Bunny Manders in Raffles, the amateur cracksman in The Three Musketeers. In 1926, Wantner appeared in The Captive alongside Basile Rathbone. Both went on to play Sherlock Holmes on a film. Here's an excerpt from the film.
I am, except my feelings and my tie, which is entirely disorganized.
Well, we proved our Moriarty theory all right, Mr. Holmes.
It's not easy to throw dust in your eyes, my dear Lestrade. Doesn't do to trifle with Scotland Yard.
Quite true, Mr. Holmes, quite true.
आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार जोहरा सहगल की। वो इस देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चहेती अदाकारा है, जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। थिएटर को अपना पहला प्यार मानने वाली जोहरा ने परंपरा को तोड़ने और कला की दुनिया में अपनी सार्थकता को तलाशने में अपनी जिंदगी के करीब 70 साल लगा दिए। थिएटर के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जिनमें हम दिल दे चुके सनम, वीर जारा और चीनी कम जैसी फिल्में शामिल हैं। जोहरा सहगल को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। आइए सुनते हैं प्रसार भारती में दिए गए उनके साक्षात्कार का एक अंश।
तो बिजली चमकती थी तो मैं पागलों की तरह बारिश निकल जाती और जोर से कहती, बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाटे से, और पागलों की तरह नाचती थी। तो मेरी टीचर्स कहती, सूरा अंदर आओ, क्या कर रही हो, बिजली गिरेगी तुम्हारे। यू थिंक आई केयर? नॉट एट ऑल।
इसी साक्षात्कार में उन्होंने कुछ पंक्तियां भी सुनाई थी।
है वहां है ना वो इंसान, जिन है न वो परी है, सीने में उसके हरदम एक आग सी भरी, आती है शोर करती, जाती है गुल मचाती, वो अपने खादिमों को है दूर से जगाती, बेखौफ बेमुहाबा हरदम रवा दवा है, हाथी भी उसके आगे एक मोर ना दवा है, हर चीज से निराली है चाल ढाल उसकी, पाओगे सनतों में कमतर मिसाल उसकी, बरकत से उसके बेपर परदार बन गए हैं, मुल्कदम कदम से उसके गुलजार बन गए हैं।
आज सरगंगा राम की भी पुण्यतिथि है। वे एक प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे। उन्होंने सरगंगा राम ट्रस्ट सोसाइटी बनाई, जिसके अंतर्गत विधवा आश्रम, अपाहिज आश्रम, चिकित्सालय और संस्थाओं की स्थापना की गई।
Nikola Tesla was born and raised in the Austrian Empire. Tesla first studied engineering and physics in the 1870s without receiving a degree. He then gained practical experience in the early 1880s working in telephony and at Continental Edison in the new electric power industry. In fact, Jaya, on World Energy Day, we are reminded of shared passion and innovation as Elon Musk's electric car company Tesla is named after Nikola Tesla. So Tesla set up laboratories and companies in New York to develop a range of electrical and mechanical devices. His AC induction motor and related polyphase AC patents, licensed by Westinghouse Electric in 1888, earned him a considerable amount of money and became the cornerstone of the polyphase system, which that company eventually marketed.
आज क्रिकेट की दुनिया के महानतम बल्लेबाज लिटिल मास्टर यानी सुनील गावस्कर का जन्मदिन है। सुनील गावस्कर ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाए और ये जादू उन्होंने चार चार बार करके दिखाया। 34 शतक लगाकर उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। सुनील गावस्कर को अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और विजडन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
Jessica Simpson is an American singer, actress, and fashion designer. After performing in church choirs as a child, Simpson signed with Columbia Records in 1997, age 17. Simpson released the record's title track, Irresistible, as the lead singer from the project in April 2001. The single became her second top 20 hit on the Billboard Hot 100 chart. Simpson released her second studio album, Irresistible, on May 25, 2001. The album sold 127,000 copies in the United States. Here's Irresistible coming up just for you.
आज ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का भी जन्मदिन है। पटियाला घराने से संबंधित परवीन सुल्ताना ऐसी प्रतिभाशाली गायिका हैं जिन्हें वर्ष 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। असमिया पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली परवीन सुल्ताना ने पटियाला घराने की गायकी में अपना अलग मुकाम बनाया। उनके गुरुओं में आचार्य चिन्मोय लाहिरी और उस्ताद दिलशाद खान प्रमुख रहे। गीत को अपनी अंतरात्मा मानने वाली परवीन सुल्ताना की जन्मभूमि असम और कर्मभूमि मुंबई रही है। परवीन सुल्ताना उन चुनिंदा शास्त्रीय गायिकाओं में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत आवाज से नवाजा जिसका कोई सानी नहीं था। उन्हें पद्मश्री के अलावा गंधर्व कलानिधि, मियां तानसेन पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। परवीन सुल्ताना ने फिल्मों के लिए अपनी आवाजें दी। उनकी आवाज में इस खूबसूरत गीत के साथ उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे
Frederick Hubbard Quine was an American actor, artist and author who is widely known for his roles in 1960s television sitcoms Car 54, Where Are You? And The Munsters. Here's a song from the very rare At Home with The Munsters album.
When you are walking the street at night and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your head clammily, but they're not necessarily dead.
आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली की जयंती है। उन्हें ऐसे गीतकार में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक का लंबा संघर्ष किया। असद भोपाली का जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल के इतवारा इलाके में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अजदुल्ला खान था। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1940 में मशहूर फिल्म निर्माता फजली ब्रदर्स ने असद को पहली बार फिल्म दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन किया था। इसके अलावा उन्होंने अफसाना, बरसात, पारसमणी, आया तूफान जैसी कई फिल्मों में अपने गीतों का जादू बिखेरा। पारसमणी के इस गीत ने उनके कलम का जादू मनवाया।
दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा।
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुझे यानी जया और नीना को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने का। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by Morning News in English, 8:15 a.m. Have a superb day.
Namaskar. Namaskar.